वेदांत दर्शन प्रथम अध्याय प्रथमा वादा मनुष्य शरीर में उत्पन्न होने के बाद संसार भोगों की कामना रहती है। उन भोगों और कर्मों को करने के बाद जब मोह ममता छूटती है तब यह समझ में आता है कि इन कर्मों का भोग रूप फल नाशवान है। तब वह विचारवान पुरुष ब्रह्म को जानने की इच्छा करता है। इस सूत्र में जिस ब्रह्म की जिज्ञासा की गई है उसका लक्षण इस प्रकार है। अब शंका होती है कि जड़ प्रकृति की आत्मा के संपूर्ण अधिकार वाली क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वह भी भोग आदि का साधन है। जो व्यक्ति उस ब्रह्म में निष्ठावान हो वे ही मुक्ति का उपदेश पाने का अधिकारी है, क्योंकि प्रकृति में निष्ठा रखने से मोक्ष कभी नहीं हो सकती। यदि ब्रह्म अचेतन होता तो उसके प्रति निष्ठा रखने वाले को मोक्ष उपदेश कभी नहीं किया जाता। प्रकृति ब्रह्म में बुद्धि रखने वाले प्राणी की मुक्ति होती है। प्रकृति के लिए आत्म शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। यदि ब्रह्म गौण एवं अचेतन होता तो मोक्ष का उपदेश देने वाले वेदांत वाक उसे त्यागने योग बताते और मोक्ष चाहने वाले भक्तजन उस ब्रह्म की उपासना कदापि नहीं करते। सभी शास्त्र ब्रह्म से विरुद्ध विष्णु का त्याग करने का उपदेश करते हैं, परंतु ब्रह्म का त्याग करने के लिए कहीं भी निर्देश नहीं है। इसलिए ब्रह्म के लिए ही आत्म शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रकृति के लिए नहीं। ब्रह्म स्वयं में ही लीन हो जाता है अथवा ब्रह्म से उत्पन्न विश्व ब्रह्म में ही लय हो जाता है। यदि ब्रह्म सगुण होता तो वह अपने में लीन होने वाला नहीं कहा जाता। सात से सपन अर्थात सुषुप्त जीव अपने कारण रूप ब्रह्म में लय हो जाता है, अतः सत सपन जीव का लय प्रकृति में नहीं हो सकता। वह तो निर्गुण और परिपूर्ण ब्रह्म में ही सपन है। सात नाम से बताया गया विश्व का कारण रूप ब्रह्म जड़ नहीं हो सकता। सभी वेदवाक समूह समान रूप से निर्गुण ब्रह्म को ही जगत का कारण कहते हैं। गति का अर्थ मुक्ति भी है। विज्ञान कण सर्वशक्तिमान सत चेहन रूप जगत कारण परमात्मा ही उपास्त होकर मोक्ष प्रदान करता है। सभी वेद आदि शास्त्र समान रूप से उसे एक रूप बताते हैं। उपनिषद उसी ब्रह्म से प्राण की उत्पत्ति कहते हैं, उसी से मन इंद्रियां आकाश वायु तेज जल पृथ्वी का सृजन होता है। यह सभी काल जड़ प्रकृति द्वारा किए जाने संभव नहीं है। श्रुतियों ने भी ब्रह्म को ही इस जगत का कर्ता कहा है। ये सभी ब्रह्म को सब का परम कारण और समस्त कारणों का और ईश्वर बताती है। ब्रह्म अजन्मा है, इसलिए उसका कोई पिता नहीं, परंतु प्रकृति का बदायक वही ब्रह्म है। श्रुतियों ने ब्रह्म को निर्गुण कहा है, इसलिए वह कहने योग्य भी है। न कहने योग्य वस्तु श्रुतियों का विषय प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए इस अद्भुत विश्व का रचयिता ब्रह्म ही है, प्रकृति नहीं। आनंद में ब्रह्म के बारंबार कीर्तन से यह सहज सिद्ध है कि प्रकृति जगत की कारण रूप नहीं है। श्रुतियों ने ब्रह्म के निमित्त आनंद शब्द का बारंबार प्रयोग किया है। ज्ञानी जन भी उसी पारगम परमेश्वर का ध्यान युक्त अभ्यास करते रहते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष एवं ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। श्रुतियों में स्थान स्थान पर ब्रह्म के निमित्त आनंद एवं आनंदमय शब्द प्रयुक्त हुआ है। अतः ब्रह्म तो आनंदमय है, प्रकृति पदार्थ नहीं है। और माइट परते का बोध यहाँ निरार्थक नहीं है, वह परचुरता अर्थ का ही बोध कराता है। इसलिए यह कहना अनुचित है कि आनंदमय शब्द से ब्रह्म का बोध नहीं होता। ब्रह्म को आनंद का हेतु बताया गया है, इससे आनंदमय शब्द बकारवान का बोध नहीं कराता। जो आनंद का कारण होगा उसी से आनंद को आनंद की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए आनंद के साथ मैं यहाँ बकार का बोध नहीं है, उससे परचुरता का बोध होता है। इस बंध में वेद मंत्रों में उसी निर्विकार ब्रह्म का वर्णन है, उसी के आधार पर उपनिषद आदि ग्रंथों में उस ब्रह्म की महिमा का गान किया गया है। वही पारब्रह्म एवं आनंदमय ईश्वर सब का अंतरात्मा है, इसलिए आनंदमय शब्द जीव का वाचिक पदार्थ नहीं हो सकता। अब यह शंका होती है कि आनंदमय शब्द की को जीववाचक मान लेने में ही क्या आपत्ति है। इसका उत्तर यह है, उपरोक्त प्रमाणों द्वारा आनंदमय ब्रह्म से अन्य कोई भी सिद्ध नहीं होता। यदि जीवात्मा आनंदमय होता तो वह बपिन जोनियों में भटकता और दुख पाता क्यों परमन करता, इसलिए जीवात्मा को आनंदमय कहना मिथ्या है। परमात्मा और जीवात्मा में भेद बताया गया है, इसलिए भी जीवात्मा को आनंदमय नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म को रस रूप कहा गया है, रस रूप ब्रह्म को प्राप्त होकर जीवात्मा आनंद में हो जाता है। अतः जैसे आनंद की प्राप्ति होती है वही आनंद में है, जीवात्मा तो उस आनंद में से आनंद प्राप्त करता है, इसलिए भी जीवात्मा को आनंदमय नहीं कह सकते। आनंदमय में कामना भाव प्रदर्शित हुआ है, जैसे उसने इच्छा की कि सृष्टि की रचना करूं, इससे भी आनंदमय ब्रह्म की जगत रचना रूप चेतना की ही सिद्धि होती है। यह कार्य जड़ प्रकृति के लिए कदाप संभव नहीं है, इसलिए अचेतन में ही आनंद का आरोप करने की कल्पना भी अपेक्षित नहीं है। परमात्मा के आनंदमय तत्व का ज्ञाता उसी ब्रह्म में मिल जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इन प्रमाणों से यह सिद्ध है कि जीवात्मा को आनंदमय नहीं कहा जा सकता, केवल पारब्रह्म ही आनंदमय शब्द से विभूषित कहा जा सकता है। वह ब्रह्म जगत के भीतर विद्यमान है, जो आयुर्वेद में प्रजापति का धर्म इस जगत का अंत वर्ती कहा गया है, अर्थात वह ब्रह्म जगत का कर्ता तो है ही, जगत के अणु अणु में रमा हुआ है। यह कर्म जड़ प्रकृति का कभी नहीं हो सकता। शास्त्र में जीव से ब्रह्म का भेद कथन किया जाने से भी जीव और ब्रह्म पृथक पृथक हैं। सर्वव्यापी परमेश्वर प्राणियों में निवास करते हुए भी उससे भिन्न है। उपनिषद वाक है कि जो चक्षु में रहकर भी चक्षु से पृथक है, जिसे चक्षु नहीं जानता पर चक्षु उसी का देह है, जो चक्षु के अंतर नियमन करता है वही तेरा अंतरात्मा और अमृत है। इस प्रकार आत्मा का चक्षु से पिंतन बोध होने से सिद्ध होता है कि वह आनंदमय ब्रह्म ही उपासनीय है। ब्रह्म को ही आकाश कहा गया है कि यह संपूर्ण मूल आकाश से उत्पन्न होते और आकाश में ही विलीन होते हैं। आकाश सबसे बड़ा और सबका प्राण है, अर्थात सभी आकाश के आश्रय में है। आकाश को जगत का कारण रूप कहने से भी यह स्पष्ट है कि आकाश ब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि ब्रह्म के लक्षणों का आकाश में आरोप किया गया है, अन्यथा भूताकाश के यह लक्षण नहीं हो सकते। उपरोक्त हेतुओं से प्राण का भी ब्रह्म होना सिद्ध होता है। संपूर्ण भूत प्राण में ही लीन होते और प्राण से ही उत्पन्न होते हैं, यह लक्षण ब्रह्म के ही हो सकते हैं, प्राण वायु के नहीं, क्योंकि प्राण वायु संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति स्थिति और विनाश का कारण नहीं हो सकता। यह धर्म तो पार्वन परमेश्वर के ही हैं, इसलिए प्राण शब्द से यहाँ ब्रह्म का ही वर्णन हुआ है। शास्त्रों ने ब्रह्म का ज्योति स्वरूप भी बतलाया है। इस दिन से परे, इस दिव्य से परे सभी प्राणियों से ऊपर और विश्व से भी ऊपर जो ज्योति प्रदीप्त है वही इस पुरुष में है। इस प्रकार यह ज्योति शब्द का यह ज्योति शब्द जड़ का वाचक नहीं है, क्योंकि ज्योतिर्मयी ब्रह्म के चार पाद कहे गए हैं। सर्वभूत उस ब्रह्म से एक पादस्य है तथा तीन पाद अमृत स्वरूप है और परम धाम में स्थित बताए गए हैं। इससे ज्योति शब्द से अग्नि का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न ज्योति जगत का कर्ता नहीं। उसी ब्रह्म द्वारा उत्पन्न जगत के अंतर्गत उत्पन्न पदार्थ हैं। अतः जहां ज्योति शब्द को ब्रह्म का वाचक ही मानना उचित है। यदि ऐसा कहो कि चरण कल्पना तो गायत्री नामक छंद की है, परमात्मा की नहीं, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गायत्री छंद के द्वारा ब्रह्म में चित्त वृत्तियों का समर्पण करने का कथन है। और ऐसा ही विभिन्न शास्त्रों में देखा जाता है। अतः गायत्री छंद द्वारा जड़ चेतनात्मक संपूर्ण विश्व के कारण रूप ब्रह्म में चित्त वृत्तियों का समर्पण होने से गायत्री भी ब्रह्म रूपा ही है, क्योंकि वेदों में प्रणव आदि नामों को ब्रह्म का वाचक कहा गया है। इस प्रकार गायत्री भी ब्रह्म है। जब सब कुछ गायत्री ही है ऐसा मानते हुए भूत पृथ्वी शरीर और हृदय रूप गायत्री के चार शब्द कहे गए हैं और ब्रह्म में उसकी तुलना करते हुए सब भूतों को उसका रूप याद उसका एक पाद कहा गया है। इसकी संगति तभी बैठती है जब गायत्री रूप से उसे ब्रह्म ही माने, और यह ठीक भी है, क्योंकि गायत्री को केवल छंद मानने से भूतादि को उसके कारण नहीं मान सकते। यह लक्षण तो केवल ब्रह्म के ही हैं और इस प्रकार गायत्री और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। त्रिपाद अस्य अमृतम दिवि के अनुसार तीन चरण युक्त ब्रह्म अमृत रूप और दिव्य लोक में कहा है तथा अथ यदता परोदया के अनुसार ब्रह्म को दिव्य लोक से परे बताया है। इस परस्पर विरोधी लगने वाली बातों से यदि शंका हो तो इस प्रकार समझना चाहिए कि ब्रह्म दिव्यलोक पर्यंत संपूर्ण विश्व के भीतर है और बाहर भी है। यही बात ईशो उपनिषद में भी कही गई है। इसी प्रकार गायत्री की ब्रह्म की उपासना में प्रयुक्त होने पर ब्रह्म उत्तर प्रतीत होती है, परंतु उसका निवास भी सर्वोपर परमधाम से कहा जाने से निश्चय ही वह ब्रह्म है। इस प्रकार गायत्री ब्रह्म का ही वाचक है। पूर्वा पर प्रसंग पर विचार करने पर यह सिद्ध हो जाता है कि प्राण शब्द ब्रह्म से प्रयुक्त हुआ है। सा एषा प्राण एव प्रज्ञातम प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृता। मैं आनंद में अजर अमर आदि जो विशेषण है वे सब ब्रह्म के प्रति ही हो सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। यदि यह कहा जाए कि इंद्र ने जहां स्वयं को ही प्राण शब्द से निर्दिष्ट किया है, इसमें प्राण शब्द का बोध ब्रह्म के निमित्त नहीं जीव के निमित्त होता है, तो ऐसा समझना ठीक नहीं है, क्योंकि इस कारण में अध्यात्मक विषय की ही अधिकता है। अधिदैवक विषय की नहीं, इसलिए प्राण शब्द से जीव का नहीं उपास्य रूप से इंद्र लक्षण सपन ब्रह्म का ही बोध होता है। जिस को आयत जो वृत्ति है शास्त्रों में उसका उसी रूप में वर्णन किया जाता है। प्राणी को ब्रह्मत वृत्ति के कारण यहाँ इंद्र अपने को उपास कहते हैं। इस प्रकार इंद्र का ब्रह्म रूप सिद्ध हुआ। बृहदारण्यक श्रुति में ऋषि वामदेव भी कहते हैं अहम मनोभवम और अर्थात मैं मनु हुआ और मैं ही सूर्य हुआ। इस प्रकार के वचन में मैं शब्द से मेरी आयुक्त वृत्ति का कारण और रूप ब्रह्म ही समझना चाहिए। इसमें इंद्र स्वयं ही अपने में ब्रह्म का स्पष्ट आरोप कर लेते हैं, अतः वामदेव को भी ब्रह्म का वाचक मानना ही ठीक है। इस शब्द से जीव और प्राण वायु के ग्रहण की यदि शंका की जाए कि अर्थात वाणी को जानने की अपेक्षा वक्ता को जानना चाहिए, कथन से जीव का लक्षण स्पष्ट हुआ और प्राण ही प्रज्ञा है, वही इस शरीर की पकड़ शरीर को पकड़ कर उठाता है, इसे प्राण वायु का लक्षण प्रकट हुआ। इसलिए प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है तो यह शंका निर्मूल है, क्योंकि तीन प्रकार की उपासना कही गई है। ब्रह्म को जीवन का आधार माने, ब्रह्म को शरीर का उठाने वाला समझे और ब्रह्म को ही परमेश्वर युक्त जाने। जहां प्राणी भी ब्रह्म के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, जहां वाणी भी ब्रह्म के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह ब्रह्म वाणी की वाणी और प्राण का भी प्राण है। इस प्रकार प्राण शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण होता है, वायु का नहीं। जीव और प्राण आदि सभी ब्रह्म के आश्रित ही हैं। इससे भिन्न कुछ नहीं। सभी शास्त्रों में ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश है। वह ब्रह्म सर्वत्र प्रसिद्ध है। श्रुतियां कहती है कि जय अखल विश्व भी ब्रह्म ही है, क्योंकि वह ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, उसी के द्वारा स्थित रह कर अंत में उसी में विलीन हो जाता है। इसे प्रसिद्ध ब्रह्म का ही उपदेश होता है। भवे पूर्ण बुद्धि के द्वारा मां ब्रह्म को ग्रहण करने का यत्न करता है। जिस ब्रह्म का अंश जीवात्मा है, जो स्वयं तेज रूप और सत संकल्प है, तथा आकाश के समान सूक्ष्म एवं निर्मल है, यह परम ब्रह्म में ही कहे गए हैं। इसलिए स्वा ब्रह्म के अन्न में संगत नहीं हो सकते। जीवात्मा में मनोमयादि गुण नहीं करते। उपासना के लिए सत संकल्प, सर्वव्यापकत्व, सर्वात्मकत्व आदि गुणों का कथन किया गया है। वे गुण ब्रह्म के अतिरिक्त अन्न में नहीं हो सकते, इसलिए जीवात्मा उपास्य नहीं। अतः इस प्रसंग में ब्रह्म को ही उपासना के योग मानना उचित है। और विशिष्ट गुण युक्त ब्रह्म रूप जो आत्मा मेरे हृदय में निवास करता है और मरण उपरांत परलोक में यही मुझे प्राप्त होगा, इस प्रकार आत्मा रूप ब्रह्म प्राप्त और जीव उसे प्राप्त करने वाला कहा गया है। अतः उपास ब्रह्म है, जीवात्मा नहीं हो सकता, यही मानना चाहिए। उपासक और उपास के हेतु शब्द का भेद होने से कि जीवात्मा का उपास्तुभ सिद्ध नहीं होता। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि आत्मा के भीतर परमात्मा है। इससे सिद्ध हुआ कि जीव रूप आत्मा और ब्रह्म रूप परमात्मा में शब्द भेद होने से भी जीव ब्रह्म नहीं है, परंतु वह ब्रह्म में संगीत करने पर ब्रह्म रूप हो जाता है। इस प्रकार भी जीव और ब्रह्म में भेद सिद्ध होता है। स्मृतियों में श्री भगवत गीता मनुस्मृति प्रवृत्ति ग्रंथ माने जाते हैं, उनमें भी जीव और ब्रह्म की अभिन्नता नहीं मानी गई। भगवत गीता में ईश्वर को सब प्राणियों के हृदय में स्थित कहा गया है। इससे भी जीव और ब्रह्म का भेद स्पष्ट है। इस प्रकार उपासदेव ब्रह्म ही है, उसके भिन्न कोई नहीं। यदि कोई कहे कि हृदय जैसे छोटे से स्थान में निवास करने वाला ब्रह्म भी अत्यंत छोटा होगा, इसलिए वह सर्वव्यापक नहीं हो सकता, ऐसा समझना ठीक नहीं है, क्योंकि हृदय के परिमाण अनुसार सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापक ब्रह्म का अनुत्वादि कहना औपचारिक मात्र है। यदि हृदय की आकाश से तुलना करे तो उसमें सूक्ष्म होते हुए भी विशालता का रूप किया जाता है। इसी प्रकार आकाश भी सूक्ष्म और व्यापक है, इसलिए ब्रह्म को आकाश के समान ही सूक्ष्म और व्यापक मानना चाहिए। वेद वाक्यों के अनुसार सूक्ष्म होते हुए भी वह ब्रह्म संपूर्ण विश्व के भीतर और बाहर सर्वत्र स्थित है, वह एक देशीय नहीं है। देहधारी जीव के हृदय में निवास करने वाले ब्रह्म को उसी की भांति सुख दुख को भोगने होंगे, ऐसा कथन निर्मूल है, क्योंकि जीव से ब्रह्म में विशेषता कही गई है। ब्रह्म बिना भोगों के ही प्रकाशित होता है। इस कथन से ब्रह्म में कर्ता और भोगता का रूप नहीं होता, वह जीवात्मा के हृदय में निवास करता हुआ भी उसके गुणों दोषों से पृथक रहता है। जीवों की अपेक्षा ब्रह्म में जय विशेषता है। जहाँ ब्रह्म में भोगतापन का आरोप होने से शंका होती है कि वह जीव के समान कर्म फल रूप सुख दुख का भोगता तो नहीं है, परंतु ब्रह्म को यज्ञ और तप का भोगने वाला कहा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि प्राणी जिस ब्रह्म के लिए भोजन करते हैं और जो सभी का संहारक बनता है, वह ब्रह्म जहाँ और जैसा है इसे कौन जानता है। इसे सिद्ध हुआ कि सृष्टि के संहार काल से काल में चराचर विश्व को अपने में लय करने के कारण ही वह ब्रह्म भोगता है, ऐसा कहा गया है। जय प्रकरण ब्रह्म संबंधी है, इसलिए इसमें ब्रह्म का ही वर्णन हुआ है, जीवात्मा अथवा अन्य किसी का नहीं हुआ। उपरोक्त सूत्रों में भी ब्रह्म के प्रति की जाने वाली शंकों का समाधान किया गया है। अतः पूर्वापर प्रसंग के अनुसार भी यह सिद्ध होता है कि जहाँ ब्रह्म के प्रति ही अतः शब्द प्रयुक्त हुआ, अन्य किसी के प्रति नहीं।